शांति। अभी अभी बेफिक्र बादशाह बनने कौन होता है, कैसे होते हैं, उसका गीत सुना। क्या था गीत जी? आप बाबा मिले सदा साथ है, फिर और क्या चाहिए हमें। तो बेफिक्र बादशाह हो गए ना। बाबा साथ है तो बेफिक्र है, पर बाबा साथ सदा रहे तो सदा बेफिक्र रहे, उसके लिए पुरुषार्थ है। तो सदा साथ कैसे रहे? पहले तो निश्चय चाहिए। बिना निश्चय के सदा साथ का अनुभव नहीं कर सकते। किस बात का निश्चय? पहले तो खुद में भी निश्चय चाहिए, मैं कौन हूं। फिर बाबा में निश्चय चाहिए कि बाबा हमारे साथ हैं। फिर ड्रामा में भी निश्चय चाहिए कि जो कुछ होता है नथिंग न्यू, जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। बस ये तीन बातें अगर बुद्धि में सदा पक्का है तो सदा बेफिक्र बादशाह है। और वो हमने ब्रह्मा बाबा से अनुभव किया, बाबा की मुरलियों से पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह थे। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं, जिसके माथे मामला उसको नींद कैसे आए। कभी कभी बाबा के आगे ऐसी बातें आती थी तो नींद भी उड़ जाती थी, लेकिन फिर शिव बाबा को कहते थे, बाबा ये तो आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है, आप जानो। क्योंकि शिव बाबा कहते हैं कि जो भी बातें वो मुझे दे दो, मुझे यूज करो, कोई बोझ हो तो क्या करो, मुझे दे दो, बाबा संभालो। जैसे कई बार होता है ना, कोई बच्चे को कोई चीज दो, अब उठाना बहुत भारी है, मम्मी आप लो। क्योंकि उठा नहीं सकता है तो कहेगा मम्मी आप लो, या चल चल करके भी थक जाता है तो कहेगा मम्मी उठाओ, होता है ना उठाओ, क्योंकि चल करके थक गया है तो मम्मी उसका बोझ उतारती है। तो माँ बाप अगर साथ हैं तो बच्चों को क्या फिक्र है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि इस समय जो बाप बच्चे का संबंध पूरा पूरा अगर निभाते हैं तो बेफिक्र बादशाह सहज बन सकते हैं। किस किस बात के फिक्रात होते हैं थोड़ा वो भी सोचें। कई बार धन का फिक्रात होता है, कई बार तन का फिक्रात होता है, बहुत फिक्रात की कई बातें हैं, चिंता, हर प्रकार की चिंता है, कई संबंधों की के बारे में चिंता है, अपने तन के रोग के बारे में चिंता है, धन के बारे में चिंता है, भविष्य के बारे में चिंता है, बहुत सारी चिंताएं आ सकती है। कई तो ऐसे हैं कि जो बीत गया उसकी भी चिंता, पता नहीं कैसे बीता, अरे बीत गया सो बीत गया। जिसको बाबा कहते हैं कई बार वो बात वापस नहीं आती है जो हो गई, लेकिन हम उस बात को याद करते करते उस वो बात तो चली गई लेकिन हम उसको बढ़ा देते हैं सोच करके ज्यादा, और चिंता की चिता पर जलते रहते हैं बिना मतलब के। चिंता भी एक चिता है। इंसान मरता है तो एक ही बार उसका शव चिता पर जल करके खत्म हो जाता है, और चिंता की चिता बार बार, तो एक चिंता की चिता है, दूसरी चिंता को चिता कौन सी है, ईर्ष्या। ईर्ष्या की भी बहुत बड़ी चिता है, इंसान उस चिता में भी जलता है, इसको इतना क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, तो ईर्ष्या करता रहेगा, अंदर ही अंदर जलता रहता है ईर्ष्या में, वो भी एक चिता ही है, चिता मना जहां जिसमें जलते हैं। और तीसरी चिता कौन सी है, क्रोध की चिता, वो भी चिता है, क्रोध भी अग्नि है, चिंता भी अग्नि है, ईर्ष्या भी अग्नि है, जलते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो बाबा कहते हैं कि अब वो चिता तो शांत हो गई ना, कि वो भी है वो चिंता चिता है, अग्नि वो शांत हो गई ना, क्रोध की अग्नि भी शांत हो गई, ईर्ष्या की अग्नि भी शांत हो गई, तो चिंता की अग्नि भी शांत हो गई, तो बेफिक्र बादशाह है। तो ये कैसे शांत होती है, तो उसके लिए बाबा ने इतना ज्ञान दिया है हमें, तो आत्मा परमात्मा और ड्रामा या चक्र कहो, इस ज्ञान से ये सहज बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। किसी को पता चला कि भाई हमको कैंसर है मान लो, और डॉक्टर ने कहा ये तो पूरा अभी 6 मास से ज्यादा नहीं चलेंगे, तो 6 मास भी इतना ज्यादा हो जाता है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि चिंता है मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, तो 6 मास तो क्या 3 मास में मर जाता है, पता है 3 मास में, क्योंकि चिंता ने उसको और उसकी आयु को कम कर दिया, जो और भी जो 6 मास रहने वाला होगा। और अगर पता भी चला तो भी चिंता नहीं, तो वो 10 साल भी निकाल सकता है, ऐसे भी होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मरने से डरना क्या है, क्या किसी को डर, जिसको मृत्यु का डर हो हाथ उठाओ, तो है बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता तो मृत्यु की है। हाय दुनिया में तो कई लोगों को हमने देखा है, पल पल पर कदम कदम भाई मर जाऊंगी है मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर न जाऊं मर न, अरे भाई काई को मरेंगे, ऐसे मरना इतना सहज थोड़ी है, सहज आत्मा इतना सहज थोड़ी शरीर से निकलती है, नहीं निकलती है। कितने ऐसे लोग देखे कोमा में पड़े हैं, फिर रोज ये न्यूज आ रही है, अभी बहुत बड़ी न्यूज दुनिया में बढ़ती जा रही है, और उसका हल अभी है नहीं, कई देशों ने तो हल निकाल दिया है, समझो कोई बिल्कुल कोमा स्टेट में है कई महीनों से, और डॉक्टर कहता है कि बस नली निकाल दो खत्म, लेकिन ऐसे नहीं निकाल सकते। ये तो ऐसे हुआ जैसे कि उसने उसका मर्डर किया, डॉक्टर ने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे उसने उसको मार डाला क्योंकि निकाल दिया। बहुत रेयर में से रेयर केस ऐसे होते हैं कि चलो खत्म, बिल्कुल वेजिटेबल बन गया है, बिल्कुल जैसे कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो वो कई कहते हैं कि जब कुछ है ही नहीं तो बस मुझे मार डालो, लेकिन नहीं मार सकते। तो अभी ये बहुत बड़ा बहस छिड़ गया है, मर्सी किलिंग उसको कहते हैं, मर्सी किलिंग माना डॉक्टर उस पर रहम करे, रिश्तेदार उसको पर रहम करे, इंजेक्शन देके मार डाले, लेकिन अगर किया तो मर्डर केस हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर सकते डॉक्टर। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है कि भाई ये मर्सी किलिंग इंडिया में होना चाहिए, वे बहुत पड़े हैं मर नहीं रहे हैं, तो उनको ये अथॉरिटी मिले कि वो अगर सब कहते भी हैं तो भी अथॉरिटी मिले और वो करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम ये नई लॉ पास कर सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट में जाओ, जो पार्लियामेंट में एमपीज हैं, जो वो पार्लियामेंट वाले, वो अगर ये लेजिस्लेचर वो लॉ पास करते हैं तो हमको कोई परवाह नहीं, तो हम मानेंगे, बाकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। यानी इतना सहज नहीं है मरना, समझो। कई सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं परंतु टांगे टूट गई और मरा नहीं तो खत्म, बेचारा सारी इस उम्र पड़ा रहे। ट्रेन के नीचे आना चाहते पर मरा ही नहीं, टांग हाथ पैर टूट गए, मरना था, पर अगर लिखी हुई आयु तो जिंदा। और जब मरना होता है तो पता भी नहीं चला चला गया, पता भी नहीं चला, तो इसलिए वो हमारे हाथ में है या हमारे हाथ में नहीं है जी, नहीं है हा? तो फिर चिंता करने की क्या बात है। मुझे याद है एक बार एक बहन बहुत अच्छी तरह योग में बैठी थी, बहुत अच्छी तरह योग में, उसको बस एक लगन थी मुझे बाबा कुछ सिख साक्षात्कार कराए, साक्षात्कार कराए, साक्षात, बस बहुत लगन लगी, तो बस बहुत योग किया। और अचानक एक समय उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं जा रही हूँ, उड़ रही हूँ, इतना। अब वो तो जैसे बाबा उसकी रस्सी खींच रहा था, क्योंकि उसको अंदर में लगन थी मैं ध्यान में जाऊं, मैं एक साक्षात्कार करूं, जैसे बाबा लगन खींच रहा था, अशरीरी हो गए, इतना डर लग गया उस समय मर न जाऊं तो वापस आ गए, क्योंकि आत्मा अशरीरी बन जाती है ना, तो जैसे शरीर अशरीर से न्यारी हो गई तो एक प्रकार का मरना ही है। बहुत बहुत जैसे रात को सो जाते हैं, पहले पता है कि भाई हम सोए हैं और एकदम नींद आ गई तो वो भी एक मरना ही है ना, मरना नहीं है, रोज मरते हैं, फिर जागते हैं तो अरे जागे हुए हैं। परंतु बाबा कहते हैं तुम क्या सोचो, मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, इतना बड़ा नशा है, इतना बड़ा स्वमान है कि स्वमान के आगे सारे ये डर सब खत्म हो जाते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, आत्मा जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं, तो मैं वो हूं, मैं शरीर से पहले भी थी, शरीर के बाद भी रहूंगी, इतना बड़ा नशा है। तो मरने का तो कभी मुख पर शब्द आना ही नहीं चाहिए, अगर ये आता है तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है, अज्ञान है ये, क्योंकि मैं अगर आत्मा हूं तो मैं आत्मा तो मरती नहीं, इसलिए मृत्यु का डर भी अज्ञान है, और मुख से कहना ये तो और बड़ा अज्ञान है, और अंदर डर है इसीलिए मुख से निकलता है। या कई बार दुखी होके कहेंगे हाय मर गई मर गई मर गई, हाँ निकलता है मुंह से, कभी ऐसे निकलता है जरूर। आज भी बाबा ने कहा ना, ये क्या शब्द बोला बाबा ने मुरली में, अपशब्द या कुवचन या तीसरा शब्द क्या बोला, रफ डफ, रफ डफ भी चलो दूसरों के लिए बोलते, पर अपने लिए मैं मर जाऊंगी मर गई हाय मर न जाऊं, ये भी तो अब शब्द है ना, या रफ डफ है, ये श्रेष्ठ शब्द तो नहीं है ना। बाबा तो हमको अमर लोक में लेके जाने वाले हैं, बाबा हमको घर ले जाने वाले हैं, तो हम तो यहाँ आए ही मरने के लिए है ना। कहते हैं मरे बिना न भगवान के पास जाते हैं और न ही स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वर्ग लोक जाना या भगवान के पास जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बिना मरे नहीं, कोई मरता है तभी कहते हैं स्वर्ग पधारा, जीते जी थोड़ी कहेंगे स्वर्ग पधारा, या जीते जी थोड़ी कहेंगे भगवान के पास गया मर गया तभी कहेंगे भगवान के पास गया, तो मरने के बाद ही भगवान के पास भी जाते और स्वर्ग में भी जाते हैं, तो वो कौन सा मरना है वास्तव में। बाबा कहते अभी जीते जी मरना, जीते जी मरकर चले जाओ परम धाम। भक्ति मार्ग में चिल्लाते भगवान उठा लो मुझे, हे भगवान उठा लो मुझे, नहीं जीना इस संसार में, पहले उनको यही मालूम नहीं कि जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, खाली उठा लो कहते हैं। फिर कहेंगे कि अच्छा हाँ नहीं जीना है उठा लो, तो बाबा कहेंगे कि अरे चले जाओ घर में, वो आपका ही घर है, बाबा से क्या कहते हो, अपने घर में जाने लिए आपको निमंत्रण चाहिए क्या? जब आपको अपने घर में आना है तो पत्नी को फोन करेंगे मैं गाऊं घर, अरे आओ ना, पत्नी मना करेगी क्या, कहेगी नहीं अभी नहीं आओ, 10-2 घंटे के बाद आना, कहेगी क्यों नहीं आऊं, आऊंगा क्या बात है, वो शक पड़ेगा क्यों कहती है। तो इसीलिए पूछना नहीं होता है, अपना घर है तो परम धाम तो अपना घर है ना। जब भी कोई ऐसी बात हो, कुछ ऐसे बात हो तो उड़ जाओ, अपने घर में चले जाओ। पंछी क्या करता है, पंछी होता है ना, समझो सामने कोई जानवर आया, कुछ आया, वो दौड़ रहा है, उसको पकड़ पंछी ने देख लिया तो क्या करता है, उड़ जाता है। वो डरता है क्या उसे, क्योंकि उसके पास पंख है। अब कोई इंसान भी आएगा उसको पकड़ने के लिए, पहले उड़ जाएगा, पकड़ ही नहीं सकेंगे। इंसान के पास या जानवर के पास तो पंख है ही नहीं, तो वो थोड़ी उसके पीछे पीछे जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी कोई ऐसी सामने बात आए ना, मैं आत्मा सबसे न्यारी, उड़ जाओ। बस एकदम ऐसे न्यारे बन गए, वो बात नीचे रह गई और हम ऊपर चले गए। और दूसरा क्या है, कोई बात आए तो जैसे कछुआ, कछुआ क्या करता है, देखता है कोई सामने कोई चीज आई है ना, वो चलता है धीरे 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 चलता है। और अगर कोई ऐसी बात आई ना, उसको आभास हो जाता है, तुरंत अपने हाथ पैर क्या करता है, अंदर ले लेता है, बिल्कुल बिल्कुल वहीं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तेज तो दौड़ नहीं सकता है ना। चलो दूसरा तो तेज दौड़ के भागेगा अपनी रक्षा करने के लिए, पर कछुआ अपनी रक्षा कैसे करता है, पंछी अपनी रक्षा करता उड़ करके, और कछुआ कैसे करता है अपनी रक्षा, अपने आप को समेट करके अंदर चला जाए। उसकी जो हार्ड शेल होती है, ऊपर से जो हार्ड इतना सख्त होता है, वो इतना मजबूत होता है कि कोई उसको कुछ कर ही नहीं सकता, वहां से उठा भी नहीं सकते, इतना वो चिपका चिपका हुआ रहता है। तो बाबा कहते कछुए समान बन जाओ, बस मैं आत्मा, समेट लो अपने अंगों को। लेकिन कोई कह आओ दिखाता हूं, तो माना क्या किया, अपने अंगों को निकाला, सामना करने की कोशिश की, लड़ना शुरू कर दिया, मुख से कुछ अपशब्द बोलना शुरू कर दिया, अपनी शक्ति बाहुबल की दिखाई। तो बाबा कहते हैं कभी सफलता नहीं पाएंगे, आत्मा न्यारी हो जाए। अगर कोई ऐसे आए भी ना, उसको आपसे साक्षात्कार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, देवी का साक्षात्कार हो जाए। मैं आपको एक विचित्र कहानी सुनाती हूँ, बात सच्ची बात है कि एक माता ज्ञान में आई और उसको इतनी लगन लग गई, वो कहे बाबा मुझे तो पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। लेकिन पति उसका माने नहीं, तो नवरात्रि के दिन आए, तो नवरात्रि माना उपवास करना, देवी का व्रत रखना, ये सब करना, तो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य पालन करते हैं भारत की में, तो ये है चलो वो 9 दिन करते थे। और बहुत देवी की पूजा, बहुत देवी की पूजा करता था उसका पति। और इसने अंदर ही अंदर बाबा को कहा, बाबा मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं ही वो देवी हूँ, बाबा अभी ये 9 दिन तो मेरे से न्यारा है, पर बाबा आप उनको ऐसा कुछ अनुभव कराओ जो वो सचमुच मुझे उस शक्ति रूप में देखे, जैसे वो शक्ति की पूजा कर रहा है तो मुझे भी उसी रूप में देखे, और अपने अंदर इतनी शक्ति भरी, इतनी शक्ति भरी जो बात मत पूछो। और सचमुच 9 दिन जब पूरा हुआ तो उसको लगा पूरा हुआ मेरा व्रत, पूरा हुआ मेरा जो कुछ भी है। तो फिर जैसे उसके नजदीक आया, उसी समय उसको अपनी पत्नी से देवी का साक्षात्कार हो गया, जैसे भक्ति का फल उस रूप से मिला। पर ये एक ऐसा सुंदर रूप, उसकी पत्नी की तपस्या का ये फल था कि अपनी पत्नी से उसको देवी का साक्षात्कार हुआ, और एकदम देवी जैसे उनके सामने काली रूप में आई, कभी दुर्गा रूप में आई, कभी किस रूप में, इतना डर गया वो डर के मारे वो पत्नी के आगे भी नहीं जाता था। यानी भाव है कहने का कि वो अपना अनुभव सुना रही थी वो बहन, कि उसके बाद तो इतना बदल गया है जो बात मत पूछो, और हमेशा मुझे सदा आगे रखता है। इतना उसके अंदर मेरे प्रति वो रिस्पेक्ट हो गया, और सबको यही कहता है, मेरी जो पत्नी ना ये मेरी गुरु है, वो सबको यही कहता है ये मेरी गुरु है, ये नहीं बहन है ये वो कुछ नहीं, मेरी गुरु है। तो वो अच्छी बात है ना, आजकल अगर वैसे ही आजकल ये कहते भाई स्त्री को आगे रखो तो कई बातों से आप बच जाएंगे। तो इसीलिए बहुत अच्छा अपना अनुभव उसने क्लास में भी सुनाया था कि कैसे बाबा हमको कितना मदद करते, पर तो अपनी हिम्मत चाहिए। उसने अंदर में हिम्मत रखी, ये संकल्प किया मैं एक शक्ति हूं, और बाबा शिव शिव बाबा से मैं कैसे शक्ति ले रही हूं, और शक्ति रूप अपने आप को देखती रही। वो नौ दिन वो खाली शक्ति की पूजा करता रहा, और ये नौ दिन अपने आप को उसी शक्ति के रूप में देखती रही, और इतनी उसको ताकत आ गई, एकदम जीवन ही बदल गया, उसके पति का भी जीवन बदल गया। तो यानी कहने का भाव है कि पहले तो अपने स्वमान में रहना है, वो स्वमान हमें निर्भय बनाएगा, और वो स्वमान की शक्ति अपने अंदर इतनी बढ़ानी है, ये फिकर विकर ये सब कुछ है ही नहीं। बाबा इतना हमारे लिए सहज कर लेता है, पर अपने स्वमान को बढ़ाना है। अगर हम ये कहते हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो पता ही कट जाएगा, ऐसे है ना। इसीलिए बाबा कहते नहीं, शक्ति बनो, हिम्मत अपने अंदर भरो, और वो जो हिम्मत भरी तो वो परिस्थिति आएगी भी ना, वो सूली से कांटा हो जाए, क्योंकि आपकी शक्ति उससे ज्यादा हो गई। अगर क्या होगा क्या होगा क्या होगा कहीं से उसे, तो शक्ति तो भरी नहीं अपने अंदर, तो परिस्थिति वो हावी हो जाएगी, वो बड़ा रूप ले लेगी। इसीलिए उस परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं। जो मेरे सामने परिस्थिति आई, समस्या आई, परीक्षा आई या विघ्न आया, वो तो है। हम सोचे ये विघ्न टले तो मैं आगे बढ़ू, ये परीक्षा हटे तो मैं आगे जाऊं, ये खत्म हो तो मैं आगे करूं, हाय क्या करूं, खत्म ही नहीं होती है, हाय क्या करूं, तो ताकत तो भरी नहीं, हाय हाय में टाइम और एनर्जी और सब कुछ वेस्ट कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनना है तो सबसे पहले अपने स्वमान को मत भूलो, वो शक्ति भरते रहो, तो फिर फिक्र जो बातें फिक्रात लाने वाली आएगी वो आपके लिए छोटी लगेगी। जैसे आज बाबा ने बताया ना, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा अंदर में आता है ये सुनाओ, पर बाबा जब आपके सामने आते हैं तो कुछ मुख से शब्द ही नहीं निकलता है, क्योंकि बाबा की स्थिति इतनी ऊंची, और वो जो बातें वो तो कुछ भी नहीं है बाबा की स्थिति के आगे, तो जैसे मुख ही बंद हो जाता है। वो हमने बाबा का देखा, मम्मा का देखा, दादी का देखा, दादी जी क्या अंतिम दिनों में दादी इतनी जैसे बस मिली, इतनी मीठी मीठी दृष्टि दे रही है, इतनी न्यारी इतनी प्यारी, क्या सुनाए क्या बोले भी, वो कितनी छोटी छोटी बातें हैं और उनकी स्थिति के आगे। लेकिन लक्ष्य ये कि पहले हमको अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। परीक्षा से डरना नहीं है, वो तो आएगी, और बाबा कहते हैं अंत तक और ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि समय और ही तमो प्रधान होता जा रहा है। वो समस्या हल नहीं होगी, परंतु हम अपने को ऊंचा करें तो वो समस्या छोटी हो जाएगी, है ना। एक हम लोग बताते हैं, एक एक्सरसाइज है कि भाई आप एक लकीर खींचो, अब इस लकीर को आपको छोटा करना है, कैसे करोगे बिना हाथ लगाए, है? उसके आगे बड़ी लकीर लगा दो तो वो तो अपने आप ही छोटी दिखेगी। ऐसे नहीं बढ़ाना है, बिना हाथ लगाए उसको छोटा करना है, बिना रब किए उसको छोटा करना है। तो जैसे ही बड़ी आई तो वो छोटी हो गई, तो कैसे छोटा किया उसको, क्योंकि बड़ी उसके आगे आई। तो ये ही बाबा कहते हैं उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने को बदल सकते हैं। और अपने को बदलना माना अपने अंदर वो शक्ति भरना। इसके लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, क्योंकि याद ही वो शक्ति देगा। व्यर्थ समाप्त होगा, अशुद्ध अशुभ व्यर्थ नेगेटिव नकारात्मक, क्योंकि यही शक्तिहीन बनाता है, शक्तिहीन बनाता है। नेगेटिविटी जैसे बढ़ती जाती है शक्ति खत्म होती जाती है। बैटरी चार्ज कैसे होती है, आप लोग विज्ञान में हम पढ़ते हैं। अब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो कैसे चार्ज होती है बैटरी, चीज तो वही है, पावर हाउस से जोड़ते हैं तो पावर हाउस में जो बिजली है वो बैटरी को कैसे चार्ज करती है, क्योंकि जैसे बैटरी यूज होती जाती है ना नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, नेगेटिव आयन्स पर नेगेटिव पोल पर वो कलेक्शन ज्यादा होता जाता है, पॉजिटिविटी कम नेगेटिविटी ज्यादा नकारात्मकता ज्यादा। तो जैसे नकारात्मकता ज्यादा होती जाएगी शक्ति कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। फिर अगर शक्ति को बढ़ाना है तो नेगेटिविटी को खत्म करना होगा, पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा। और जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी चार्ज होती जाएगी होती जाएगी। तो आत्मा की बैटरी भी कैसे चार्ज होगी, देह अभिमान नेगेटिविटी लाता है, और जैसे ही आत्मा अभिमानी स्थिति बनी तो पॉजिटिविटी आती गई और नेगेटिविटी खत्म होती गई, चार्ज होती गई आत्मा, शक्तिशाली होती गई आत्मा। तो उसके लिए अशरीरी बनना है, और बाबा कहते हैं यही हमारी अंतिम परीक्षा होगी, एक सेकेंड में अशरीरी बन जाएं। लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, एवर रेडी स्थिति चाहिए, क्योंकि अचानक होगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए जो एक सेकेंड में हम अशरीरी बन सके, और उसके लिए फिर अंतर में हर वक्त एवर रेडी। बाबा जो कहते हैं ना अंतिम घड़ी है, जाना है जाना है जाना है, और क्योंकि ये पता है सब अचानक होना है, कह के नहीं आना है, बता के नहीं आएगी कोई भी परिस्थिति, कभी भी बता के नहीं आई है कोई परिस्थिति। तो इसीलिए आत्मा का ज्ञान हमें इतना मजबूत बनाता है जो कोई भी परिस्थिति हमारे आगे कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही है, और वो ही नहीं है तो बाकी क्या बड़ी बात है। कोई कहेगा बे तुमको आके मार डालेगा, तो बाबा यहां तक कहते हैं मार भी डालेगा, मर आत्मा शरीर भी छोड़े पर खुशी नहीं छोड़े, ये तो कितनी बड़ी बात है। खुशी न जाए, भले शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, खुशी न जाए, इतनी ऊंची हमारी स्थिति हो जाए, क्योंकि आत्मा का अभ्यास है एक सेकंड में शरीर ही बनने का, और अंत में यही काम आना है। हम कई बार ये शूरवीरों की कहानी सुनते हैं या वो शहीदों की कहानी सुनते हैं, कितनी बातें आते हैं, तैयार थे तैयार थे। और अगर कुछ जैसे शहीदों की कहानी, देश के खातिर लड़ाई की, देश को आजाद करना, क्योंकि धारणा बहुत ऊंची थी, भावना बहुत ऊंची थी, और उस ऊंची भावना के कारण उनको कुछ भी बड़ी बात नहीं लगी। अभी तो बाबा कहते वो बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक सेकेंड में आत्मा अशरीरी बन सके, बैठे और बस न्यारी हो जाए, मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूं बस। तो इतना वो निश्चय हो अपने अंदर, और फिर उतना ही निश्चय बाबा में हो कि बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं। डर क्यों लगता, अकेलेपन का डर लगता है, अकेलापन बहुत डराता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अकेला कभी अपने को समझो ही नहीं, दुनिया से भले अकेले हो जाओ, क्योंकि उसका मोह और ही डर पैदा कराएगा, हाय उसको कुछ हो न गया हो, हाय उसको कुछ कुछ हो न गया, मतलब डरते ही रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव ही सोचेंगे नहीं। पापा मिसाल देते हैं भाई, बच्चा घर में आया नहीं, अभी 6 बजे उसको पहुंचना है वापस, और अभी 7 बज रहा अभी तक पहुंचा नहीं, तो डर पैदा शुरू, डर होना शुरू था, पता नहीं क्यों नहीं आया, पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पता नहीं कहीं वो कोई पकड़ के तो नहीं ले गया, आजकल तो किडनैप भी बहुत होती, पता नहीं कहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, इतनी चिंता इतनी चिंता इतनी चिंता, बात मत पूछो। और यहां तक भी सोच लेते पता नहीं कि मर तो नहीं गया, और मानो उनको चिंता में मार भी डाला ऐसे। और फिर देखो 7 बजे आया, अरे तुम कहां थे, बस बरसपति माँ तुम कहां थे, आप पहले तो प्यार से तो पूछो, बरस पड़े एकदम, क्योंकि अंदर में चिंता में तो उसको मन ने मार भी डाला। ठीक है, अच्छा कुछ भी होगा पता चल जाएगा ना, इसमें क्या है, तो डर किस बात का, चिंता किस बात की, क्योंकि मोह, ये मोह सताता है, ये विकार ही सब चिंता के कारण है। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा के स्वमान में रहो, फिर बाबा में निश्चय हो कि जो मेरे सामने बात आई है बाबा आप जाना। तो देखो बेफिक्र बादशाह होना कितना सहज है, बाबा को देखे देखो, अपनी समस्या बाबा को दे सकते हो कि मैं ही संभालू ये समस्या, दे सकते हो, दे दिया, सच्ची सच पूछो, सच पूछो, हाँ सच बताओ। कई बार तो फिर क्यों चिंता होती है, जो समझ रहे मुझे कोई कभी चिंता नहीं, हाथ उठाओ। देखो धीरे 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 एक दो को देख रहे हैं, बस सही बात है, बाबा को देना सीखो, बाबा को बोझ दो। हम तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण हम किससे लेते हैं, वो ट्रेन में आते हैं ना हम लोग, आप लोग अनुभव करते हो, वो कुली करते हैं, कुली कहेगा लाओ 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 लाओ, कहेगा एक पेटी सिर पर रखी, दूसरी पेटी सिर पर, कहता लाओ लाओ, अरे भाई कितना तुम उठाओगे, लाओ, फिर कहेगा इधर रखा, इधर रखा, उधर रखा, कहता लाओ, हम सोचते बेचारा कैसे उठाएगा, और वो कहता लाओ, हम कहते कैसे उठाएगा, और वो समझता है मुझे एक बार बैलेंस रखना, इसलिए यहां भी चाहिए यहां भी चाहिए, दे दो दे दो दे दो। तो बाबा भी कहते दे दो दे दो दे दो, हम कहते बाबा आपको सारा दे दो इतना आपके ऊपर वैसे ही दुनिया का बोझ है, और ये मेरा एक्स्ट्रा बोझ आप लोगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या आपका बोझ एक चुटकुला सुनाते हैं ना, कि एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा तो पेटी उसके सिर पर थी सूटकेस, तो जब बैठा तो पेटी सूट सिर पर ही रखकर बैठा, तो किसने कहा कि अरे ये पागल हो क्या, ये पेटी तो नीचे रखो ना, सिर पर क्यों रखा है, कहते टिकट तो मैंने अपने लिए, पेटी की थोड़ी लिए, अरे आपको ले जाएगी ट्रेन तो आपकी पेटी को नहीं ले जाएगी क्या, सूटकेस को नहीं लेके जाएगी। तो फिर जबरदस्ती उसको निकाला, भाई नीचे रखो, आप जाओगे तो ये ट्रेन में वो भी आपके साथ ही जाएगी, वो कोई अलग नहीं है आपसे। इसीलिए बाबा को हम कैसे दें, ऐसे सोचते हैं क्या, तो देना आता है, कैसे देंगे कैसे देंगे। हाँ ये तो बहुत सुंदर बातें हैं, लेकिन वो उस समय याद रहे ना, याद रहती है, हाँ याद ही नहीं रहती है, हाय क्या करूं, छाक है हाँ? छाक है हाँ? कहते हैं ना जो कहते, जो सचमुच ऐसे कहते हैं, हाथ उठाओ, कहते हैं छाक है हाँ? समझ में नहीं अच्छी छाक है हाँ? मना बाबा के साथ लाइन क्लियर नहीं है, तभी कहते हैं ना क्या करें, समझ में नहीं आता है। कई बार गाड़ी खड़ी हो जाती है, ट्रेन खड़ी हो गई, अब 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, क्यों खड़ी हुई है, क्यों खड़ी हुई है, समझ में नहीं आता है क्यों खड़ी हुई है। अब अंदर बैठे आपको क्या पता क्यों खड़ी हुई है, वो अभी ये काल का जो ट्रेन चली ना, वो मोदी जी उद्घाटन करके आए, हाँ हाँ जम्मू टू क्या कटरा, तो क्या हुआ, बहुत अच्छी, 2 दिन तो बड़े खुश हो गए। अभी कल की बात है तो वो इतने बड़े बड़े सुरंग है, उस सुरंग के थ्रू वो जाती है, दिखाते हैं, तो अचानक क्या हुआ, ट्रेन खड़ी हो गई सुरंग के अंदर ही। एक घंटे तक बेचारे परेशान हो गए लोग, परेशान हो गए लोग, क्या बात है सुरंग में दम घुट रहा है, परेशान हो गए। तो अब कुछ समझ में नहीं आया लोग, अब उतरे भी कैसे, ट्रैक तो बहुत नीचे, उतर भी नहीं सकते भाई, स्टेशन होता है ट्रेन नहीं चली तो चलो नहीं उतर जाओ भाई, ट्रेन चलेगी तो चढ़ जाएंगे, उतर भी नहीं सकते हैं, घुटन हो रही है, हवा नहीं लग रही है, अंधेरा हो गया, समझ ही कुछ नहीं आई बात। एक घंटे तक खड़ी रही और फिर बाद में भी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अंदर चिंता 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 बैठे हैं सारे लोग, तो पता चला कि इंजन ही फेल हो गई। अब इंजन फेल हो गई तो सब वो बिजली भी नहीं और इतना अंधेरा भी, खाली वो उसमें तो बिजली थी जो इनके जो वो सुरंगों में तो थी, लेकिन ट्रेन में नहीं, एसी 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 तो कह दिया और ओम शांति। क्योंकि जहां से वो आता था वो पता नहीं क्या फेल, कुछ फेल हो गया। पूरा एक घंटे तक विचारों को इतनी परेशानी हुई जो बात मत पूछो, परीक्षा थी। यानी कहने का भाव है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो खुशी खुशी तो बहुत हुई, परंतु तो हर एक बात के लिए तैयार भी होना होगा, हम समझे बहुत अच्छा है। तो उस समय जो सचमुच कोई योगी तो आत्मा होगी तो वो क्या हुआ क्या होगा क्या होगा, हाई छाते हो, यानी इतना चिंता करेगा नहीं भाई, जो होगा जानते हैं ना, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको मालूम है क्या करना है। हम बैठ के चिंता करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमारी चिंता करने से कोई वो जल्दी हो जाएगा क्या, लेकिन खाम खा चिंता करते कोई मतलब भी नहीं। फिर कहते भाई अच्छा बाबा आप जानो, निश्चिंत बैठे तो है ना, कहीं हमको राज जंगल में फेंक तो नहीं दिया, जाएगी गाड़ी एक दिन, क्यों नहीं जाएगी, जाएगी जहां सब वहां हम ना, इसमें क्या है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि माना अंतर में मैं सर्वशक्तिवान, उस समय भी याद आए बाबा मेरे साथ है, ये याद आए, आता ही नहीं है याद, हाय हाय। इसीलिए उसके लिए फिर बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जब गुड टाइम्स है, जब कोई ऐसी बात नहीं है, उस समय शक्ति को बढ़ाना होता है। आप देखते हैं ना माउंट आबू में ये मिलिट्री, ये आर्मी एयरफोर्स, यहाँ उनके कैंप्स लगते हैं या उनके क्वार्टर्स हैं आर्मी और एयरफोर्स के, तो यहाँ तो पीसफुल स्थान है ना, यहाँ तो कोई युद्ध नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, तो बीच बीच में इन्हों को माउंट आबू भेजते हैं आर्मी वालों को, और यहाँ ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कैसे दुश्मन पर वार करना होता है। वो वहां पर जहाँ ज्ञान स्रोत हो जाते हैं, वहां गनी बैग्स रखे हुए हैं, बैग उसमें रेत डाल करके रखते हैं, और वो नीचे से बैठ करके शूट करते हैं कि उसको टारगेट लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए, प्रैक्टिस। अभी कोई दुश्मन नहीं है सामने, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कहाँ गोली लगानी है, और लगानी है वहां लग जाएगी वहां, क्योंकि प्रैक्टिस तो की नहीं है, तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए तब तो उस निशाने पर लगेगी ना। भले सामने कोई वो दुश्मन नहीं भी है तो भी निशाना ताकने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो इसके लिए पीस टाइम्स, यहाँ कहते हैं पीस टाइम, शांति का जो टाइम है वो यहाँ प्रैक्टिस करने आती है। तो बाबा भी कहते हैं कि जिस समय आपत आ गई उस समय सोचो मैं या ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, नहीं कर सकेंगे, उसके लिए पहले से अभ्यास चाहिए, और सदा तैयार। अपने आप को, पहले कई भक्तों का हम सुनते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि अगर मेरे सामने ये परीक्षा आई तो मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस ऐसा ही होती है, अगर मेरे सामने ये परीक्षा आई तो मैं क्या करूंगा, यानी कि परीक्षा आई फिर सोचेंगे अभी क्या करना है, भूकंप आया तो क्या करेंगे, तो पहले से अभ्यास कराते हैं कि भूकंप आए तो उस समय क्या करो, उस समय नहीं सोचने बट भाई क्या करना है क्या करना है। तो अभी जो बाबा कहते हैं समय है, ये पीसफुल टाइम्स है, शांति का समय है, इस समय भरो, अपने अंदर भरो, इसलिए ये भट्टी रखी है आपकी भरने के लिए, बैटरी चार्ज होने के लिए। और यहां तक बाबा कहते हैं आगे समय आएगा जब आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकोगे, देना ही होगा, देना ही होगा। अगर आप ही भरो भरे हुए नहीं होंगे तो देंगे कैसे? इसलिए अभी पीसफुल टाइम्स अपने अंदर भरो। फिर ड्रामा का जो निश्चय है वो और भी बहुत ऊंचा है। बाप आज स्वयं और बाप तो है ही, चलो स्वयं बाप रखा पर ड्रामा नहीं रखा तो स्वयं बाप भी थोड़ा धीरे 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 डगमग होता रहेगा। मैं आत्मा तो हूं लेकिन शक्ति नहीं है, ऐसे कहेंगे। बाबा तो है पर बाबा की मदद नहीं मिल रही है, मतलब बाबा है तो भी मदद नहीं मिल रही है ये कहेंगे। तो उस समय ड्रामा याद करो, क्योंकि बाबा की भी मदद उनको मिलेगी जिनको अपनी हिम्मत होगी। अगर अपनी हिम्मत नहीं है तो बाबा की मदद ले भी नहीं सकेंगे, क्योंकि अंदर अंदर डरते रहेंगे तो मदद भी क्या लेंगे। लाइन क्लियर चाहिए ना मदद लेने के लिए भी। जैसे कोई दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन जब होता है उसको वार करना होता है तो अपने दुश्मन पर कैसे वार करता है? दो चीजों पर वार कर, हर जगह सब जगह वार नहीं करता, अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं करता, दो जगह वो वार करता है जिससे वो जिससे दुश्मनी है वो धराशायी हो जाए या शक्तिहीन हो जाए। वो दो स्थान कौन से जहां वार करेगा? एक तो वहां होगा जहां उसका रिसोर्स है, जहां उसका उत्पादन है। उत्पादन ही खत्म कर दिया तो उसकी शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि उत्पादन जहां से मिलता है उनको उनको शक्ति उसको ही खत्म कर दिया। और दूसरा वहां अटैक करेगा, अगर मान लो अपनी शक्ति खत्म हो गई, उत्पादन खत्म हुआ तो दूसरे से ले सकता है, तो दूसरे से भी वो ले न सके तो वो टावर को ही बना उड़ा देंगे, या बिजली को उड़ा देंगे, या टेलीफोन लाइन को काट देंगे, या मतलब सब कुछ जो भी उनके कम्युनिकेशन के साधन है जिनसे दूसरों से ले सके वो भी काट दे। एक तो उनका अपना रिसोर्स खत्म करेंगे और दूसरा दूसरे से भी न ले सके वो भी खत्म कर देंगे। बस ये दो को किया बना खत्म हो गया, एक एक को बम्बार्डमेंट करने की जरूरत नहीं। तो माया भी क्या करती है, जब भी माया का वार होता है, दुश्मन है ना माया, हर बार बाबा हर मुरली में हमको माया से सावधान होने के लिए कहता है। और कई रूप से माया आती है बाबा, कई बार कहते हैं माया आके नाक पकड़ती है, कभी कहते कान पकड़ती है, कभी कहते थप्पड़ मारती है, कभी कहते चोटी पकड़ती है, कभी कहते धक्का देती है, गिरा देती है, और कभी बेहोश कर देती है, और कभी तो मार ही डालती है। भिन्न भिन्न रूप से आते हैं ना, पहले कहेगा आपका नाक ही पकड़ेगा, तो माया नाक से पकड़ती माना दम घुटाती सांस हाय हाय हाय, फिर कान से पकड़ती है ना इसकी सुनेंगे उसकी सुनेंगे क्योंकि कान खुले रह गए, अच्छा ये क्या कहता है वो क्या कहता है वो क्या कहता है हा? फिर चोटी पकड़ती है माना वो ऐसे जैसे चक्कर आने लगता है ना, चोटी किसी की पकड़े और सिर पीछे हो जाए तो क्या होता है चक्कर आता है। थप्पड़ मारती है माना क्या करती है मुंह फेर देती है, तो मुंह फेरा माना इसको देखा उसको देखा उसको देखा उसको देखा, लक्ष्य को नहीं देखा, बाबा को नहीं देखा। और फिर गिरा दिया ठोंसा मार करके, बाबा कई बार कहते मल्ल युद्ध है ये, तो मल्ल युद्ध में क्या होता है गिराते हैं ना एक दो को, कोशिश करते इसको गिराएं, तो माया गिरा देती कोई विकार के वश कर देती है। फिर उठने की कोशिश करते हाँ बाबा हम जीतेंगे, बाबा प्रतिज्ञा करेंगे करेंगे, फिर माया देखती है तो फिर उठ रहा है फिर मारेगी और फिर बेहोश कर देगी, और बेहोश होते 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 ओम शांति। कई बहुत विस्तार है। तो बाबा कहते हैं माया से सावधान सावधान, आज भी बाबा ने कितना सावधान किया, सावधान ऐसा क्योंकि याद रखो अगर ये कहीं कुछ हुआ तो पद भ्रष्ट हो गया, छोड़ ना पाए, ये याद रखो ये सब है। इसलिए बाबा का हम बच्चों के प्रति बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, तो बाबा का प्यार है इसीलिए बाबा हमको सब प्रकार से शिक्षा देते हैं, वार्निंग भी देते हैं। कई लोग कहते हैं बाबा रोज मुरली में कहते धर्मराज की सजाएं खाएंगे, ये होगा वो होगा, बाबा डराते हैं क्या हमको? डराते हैं हाँ, तो ये तो डराना हो ना, सावधान होना डराना ना, नहीं, ये भी प्यार है, ये भी प्यार है, ये कोई डराना नहीं है। अभी हमको ये मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो ऑब्जर्वेटरीज बना, जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, वो अभी बताते हैं ना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश इस साल कम पड़ेगी, ये कम होगा, ये होगा, ये होगा, कितना डराते, कितना कहते, क्या डराते हैं क्या? अभी क्या हुआ, अभी ये उत्तराखंड जो पिछले साल आया था ना, इस साल फिर आया है, कितना सरकार ने उनको कहा मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो भी गए, यहां तक कि वो रामदेव बाबा भी गया, कितने 450 बच्चों को लेकर के गया, मतलब जो उनके स्टूडेंट्स होंगे उनको लेकर के गया। तो जब उनसे कहा भाई क्यों गए, जब इतना अनाउंसमेंट हो रही है कि मत जाओ उत्तराखंड, वहां गंगोत्री जमुनोत्री मत जाओ, चार धाम की यात्रा वहां मत जाओ, बारिश बहुत आएगी इन दिनों में, तो कहा हमने वो पता नहीं क्या किससे पूछा, उसने कहा हाँ भले जाओ, जबकि टीवी में आ रहा है मत जाओ मत जाओ, तो भी वो उनसे एक से पूछ लिया और गया। और अभी कहता है कि उसको सू करो, उसके ऊपर केस करेंगे, उसने हमको छुट्टी क्यों दी। तो बहुत बातें आती है, पागलपन है, सब बिल्कुल पागलपन है भाई, पता है ना इस सीजन में होता है, परंतु डराते थोड़ी है आपको, ये डराते क्यों है, ये डराता है चलो मैं जाऊंगा, अरे भाई डराना थोड़ी है, अपने को रक्षा करो ना, बचाव करो ना। तो कहने का भाव है कि बाबा हमको डराते नहीं है, लेकिन कई कहते हैं तो बाबा तो कहते ही रहते विनाश होगा विनाश होगा, विनाश तो होता ही नहीं है, इसलिए बाबा कहते शेर आया शेर आया शेर आया, शेर तो आता ही नहीं है, जब आएगा तो फिर भागेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा कब आया, लेकिन वो तो आएगा नहीं, यही सोच लिया, ये थोड़ी सोचा कि नहीं आएगा, मैंने सचमुच नहीं आएगा। तो बाबा का इतना प्यार है बच्चों के प्रति, पर ड्रामा का हमको इतना सुंदर राज बताते हैं, बच्चे कुछ भी नष्ट नहीं होता है, इसलिए बेफिक्र बादशाह रहो, इसके भविष्य, इसके बाद भविष्य बहुत उज्जवल है, ये विनाश भी हमको डरा नहीं सकेगा। हाँ डराएगा क्या, जिनको विनाश से डर लगेगा हाथ उठाओ, कोई को डर नहीं है सची, रोड पर एक्सीडेंट होता है तो डर जाते हैं, कोई ऐसे किसका, हमने तो सचमुच देखा एक वो बंदर हमारे सामने आगे ना बस जा रही थी, बस हमारी कार पीछे थी, तो बस जा रही थी तो एक बंदर कूदता हुआ आया एकदम, वो नहीं माउंट अबू रोड माउंट के रास्ते पर, तो कूदा और बस तो वहीं गई, अब उस बंदर को कुचेल दिया, अब उसके पीछे हमारी गाड़ी थी, अब कुचेल कैसे दिया, सारा उसका पेट फट गया उसी वक्त, देखो उसका पेट फट गया, सारी आंते जो उनके पेट में ना, उसका पूरा शरीर फट गया और सब ऐसे रोड पर बिखरी पड़े, और हम हमारी गाड़ी उसके पीछे था, इतना आवाज हुआ क्योंकि बंदर को लगी गाड़ी, बस लगी जो बस थी, क्योंकि उसी से ऊपर कूदा, अभी कहा बस कहा रोकेगी अपने आप को, वो तो फास्ट जा ही रही थी, तो बस, और हम लोगों ने उसी समय देखा, मतलब वो तो चली गई बस, पर हमारी गाड़ी उसके पीछे, तो सच मुझे आप सोच सकते हो कि क्या हाल हुआ होगा, परंतु ड्रामा और क्या कहेंगे, परंतु बस में चल के चले गए, पर कोई हल हिल जाते हैं, और खास करके अगर अपना एक्सीडेंट होता है तो पता नहीं कितना हिल जाते होंगे, अनुभव हमको ये भी अनुभव है, हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, पर कैसे बाबा ने हमको बचा दिया, बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उस समय मुझे ऐसे लगा, मैं पीछे बैठी थी, जोर से धक्का लगा, एक व्यक्ति आगे था वो गिर गया, उसके सिर पर ये नहीं, ये ट्राइबल लोग होते ना जो लकड़ी लेकर के जंगलों से वो जाते हैं, तो उसके हाथ पे लकड़ी थी, सिर पर थी, और हमारी गाड़ी जा रही थी, और कहां से आ गई, आ गया वो व्यक्ति पता ही नहीं चला, और एकदम से गाड़ी उसके पैर को लगी, बचाने की बहुत कोशिश की पर पैर को लग गई, अब पैर को लग गई तो वो गिरा, आगे गिरा, उसके सिर पर जो वो लकड़ियों का गड्ढा था वो हमारी गाड़ी पर गिरा, आगे का शीशा चूर चूर हो गया, और ड्राइवर ने कोशिश की कि हम इसको बचाएं, तो इसको तो गाड़ी को फेरा, तो गाड़ी को क्या फेरा, गाड़ी तो फिरी परंतु एक्सल टूट गया, पता नहीं ब्रेक फेल हो गए, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। और तो वहां पर एक आगे एक खाई थी, वो गाड़ी खाई में भी गिर सकती थी, एक पिलर था बहुत बड़ा, वो पिलर पर जाकर के मार सकती थी गाड़ी, क्योंकि चेंज की ना बिना देखे। तो उसी समय अभी एकदम सब कुछ हिल गया और शीशा टूटा और ठा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उनको तो समझ भी नहीं आया क्या हुआ उस समय। और जो हम लोग पीछे तीन बहनें बैठी थी, मैं साइड में बैठी थी, वो जो मेरे बीच में बैठी थी वो पतली सी थी, और जो उस साइड बैठी थी बहुत मोटी थी, मैं इस साइड में बैठी थी। तो वो जो पतली थी वो तो नीचे गिर गई, मतलब वो गाड़ी जो सीट के नीचे गिर गई, और जो मोटी थी वो मेरे ऊपर आकर के गिरी क्योंकि गाड़ी मना पलट गई ना, वो फिरी तो क्या हुआ वहां की, वो उसका व्हील टूट गया। लेकिन उस समय मुझे याद है मेरी स्थिति, मैंने कहा बाबा हम आ रहे बाबा हम मैं आ रही हूं। और ऐसे भी लगा एक सेकंड के लिए जिससे दिल का धड़कना बंद हो गया, बिल्कुल अशरीरी बन गई, एकदम अशरीरी बन गई। और क्योंकि कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, कुछ होगा, बस एकदम अशरीरी, बाबा मैं आ रही हूं, बस यही शब्द थे मेरे। और फिर थोड़ी देर के बाद आखिर तो जिंदा ही थे न वो खाई में गिरी न पिलर से टकराई, क्योंकि अगर खाई में जाती तो भी खत्म, पिलर से टकराती तो चूर चूर हो जाती, तो पता नहीं क्या होता। तो वहां वो झाड़ियां थी, तो झाड़ियों में जाकर के वो गाड़ी हमारी पलट गई, माना वो व्हील टूट निकल आया और वो ऐसे ऐसे सीधी सीधी जाकर के ऐसे सो गई और हम अंदर एक दो के ऊपर। लेकिन कैसा वंडर कि कुछ नहीं हुआ अंदर, हम लोग सब इंटैक्ट। और वो गाड़ी कौन सी थी, अम्बेसडर गाड़ी थी, बड़ी मजबूत। अभी तो ये गाड़ियां अभी की बड़ी नाजुक है, वो अम्बेसडर बहुत मजबूत गाड़ी थी। तो उसमें तीन आगे थे तीन पीछे थे, और मतलब अब जैसे ही हम उठे, कोशिश की, पर जो देखा हड्डी वड्डी किसी की नहीं टूटी, सब ठीक था, थोड़ी खुरोच आई यहाँ मेरे को, क्योंकि मैंने जोर से पकड़ा हुआ था ये आगे की सीट, और कुछ पकड़ने के लिए तो कुछ था ही नहीं, किसको पकड़ेंगे। लेकिन वो जो मेरा अनुभव उस समय का, बाबा मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड में इतनी अशरीरी बन गई, इतना आवाज हुआ पर बिल्कुल नहीं आई। फिर आंखें खोली तो, और एक दो से जुड़े हुए पड़े एक दो के ऊपर लेकिन फिर तो बाबा के पास हम आए, अव्यक्त बाप दादा से हम लोग मिले, बच गए, बाबा ने बचा दिया। तो बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बाबा ने जो कहा, हमको समझ में नहीं आया क्या मतलब था बाबा का। बाबा ने कहा आपका ड्राइवर बड़ा पावरफुल था। अभी कौन सा ड्राइवर, शिव बाबा ड्राइवर या वो ड्राइवर? और फिर बाबा ने कहा कि वो जो व्यक्ति था जिसके पैर को लगा, वो उस समय गिर गया, बेहोश हो गया। फिर दो चार दिन के बाद वो मर भी गया, क्योंकि उनका ब्रेन, मतलब बड़ा एक्सीडेंट था ना, कोर्ट का केस बन गया, बहुत कुछ हुआ। हम भी कचहरी में गए थे कोर्ट में, यहाँ आबू के बताने के लिए, बयान देना, विटनेस देना होता है ना, तो हमको भी जाना पड़ा था, क्योंकि हमारे साथ जो और थे वो सब विदेश की बहनें थी। हम लोग पालनपुर जा रहे थे, वो उस समय ये ग्लोबल हॉस्पिटल नहीं था, तो कोई दांत की ट्रीटमेंट, कोई आंख की ट्रीटमेंट, कोई कान की, तो सब पालनपुर जाते थे, यहाँ तो कुछ ऐसा सिस्टम था ही नहीं। तो हम वापस आ रहे थे और वो भी शाम का समय था, लेकिन बाबा ने कैसे, तो बाबा ने कहा ड्राइवर बड़ा शक्तिशाली था, कुछ ऐसा बताया। और फिर कहा कि आप सबका हिसाब किताब उस व्यक्ति पर जाकर पड़ा। अभी क्या मतलब है मैंने समझा नहीं, मतलब भाव यही था कि वो चला गया और हम सब का हिसाब किताब जो था उस आत्मा के साथ जो होगा, जो जिसको लगा, क्योंकि वो ही निमित्त ना, अगर वो नहीं आता होता तो हम तो जा रहे थे, और कोई बहुत फास्ट स्पीड भी नहीं थी। और वो फिर मर भी गया दो दिन के बाद, इसलिए वो और बड़ा केस हो गया, दो चार साल तक चला केस, फिर तो खत्म। उसकी पत्नी उसके साथ थी, पर वो पत्नी कभी भी कोर्ट में नहीं आई, एक दिन भी कोर्ट में नहीं आई जब पेशी होनी थी। और कोर्ट में नहीं आई उसने तो उस आदमी की जो उसका भाई है उसे शादी कर ली, वो तो ट्राइबल लोग होते हैं ना गांव के, जो जंगल के वो ही थे, तो इसलिए तो केस तो खत्म हुआ। लेकिन खाम खाम वो रिंग 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 करते ही रहते हैं, इंश्योरेंस मिला, सब कुछ मिला, लेकिन कहने का भाव है कि वो हमारी स्थिति उस समय, वो स्थिति का आधार क्या है कि बहुत काल का अभ्यास, एक सेकंड में आत्मा शरीर ही बन जाए और फिर ड्रामा। फिर कईयों ने हमसे पूछा, बहन जी आप लोग डर तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग सब पक्की थी, जो भी बहने सब महारत थी, विदेश की तीन बहने हमारे साथ थी। तो कहने का भाव है कि ये बाबा हमें तैयार भी कर रहा है और साथ साथ अनुभव भी करा रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है। ये हम अनुभव करें और बाबा पर, ड्रामा पर, खुद की शक्ति पर हम भरोसा रखें कि जो कुछ होता है सब कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। तो देखो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा थे। कितनी बातें बाबा के सामने आई लेकिन बाबा जरा भी हलचल में नहीं आए, क्योंकि शिव बाबा बैठा है, वो जाने। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, उनका कार्य है, मेरा थोड़ी है। मेरा हो तो मोज आए, मेरा हो तो डर हो, मेरा हो तो चिंता हो, मेरा तो बाबा का है। इसलिए ब्रह्मा बाबा बन सके और कर्मातीत बन गए, संपूर्ण बन गए, तो हम पीछे रहेंगे क्या? हम भी तो उनके बच्चे हैं। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।